पृष्ठ संख्या 93 अध्याय 5 इतिहास कला है, हिस्ट्री इज आर्ट। इतिहास के वैज्ञानिक स्वरूप में आस्थावान इतिहासकारों ने विषय के साहित्यिक स्वरूप पर कठोर प्रहार किया है। 1939 ईस्वी में हिस्टोरिकल एसोसिएशन के समक्ष भाषण देते हुए क्राफोर्ड तथा बालकेरीज, अर्ल ऑफ क्राफोर्ड एंड बालकेरीज ने कहा था कि अपने युग के अनेक इतिहासकारों को भय है कि इतिहास में गद्य शैली के प्रति विशेष रुचि अथवा इसे विशेष रोचक बनाने के प्रयास में इतिहास अपने लक्ष्य से दूर न हो जाए। संक्षेप में, इतिहास स्वयमेव एक सुंदर चित्र है जिसकी शोभा किसी आकार में मढ़कर नहीं बढ़ाई जा सकती, अथवा यह एक बहुमूल्य रत्न है जिसकी सुंदरता की अभिवृद्धि आभूषण में जटित कर नहीं बढ़ाई जा सकती। इस प्रकार वैज्ञानिक अवधारणा से प्रेरित एवं प्रभावित होकर अर्ल ऑफ क्राफोर्ड तथा बालकेरीज ने इतिहास को रोचक तथा आकर्षक शैली से वंचित करने पर जोर दिया है। ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं में अनेक ऐसे नियमों का प्रतिपादन किया गया है जिसमें साहित्यिक तथा रोचक शैली के लिए विशेष स्थान नहीं है। यही कारण है कि आधुनिक इतिहासकारों की कृतियों में आकर्षक गद्य शैली का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। इतिहास को कला अथवा साहित्य की शाखा स्वीकार किया जाए अथवा नहीं, इस संबंध में दो परस्पर विरोधी अवधारणाएं हैं। इनका सूक्ष्म विवेचन आवश्यक प्रतीत होता है। इतिहास कला नहीं है। इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने का प्रबल समर्थन प्रोफेसर जेवी ब्यूरी ने किया है। उन्होंने कहा है कि जब तक इतिहास को कला माना जाएगा तब तक इसमें सत्यता तथा यथार्थता का प्रतिष्ठापन कठिन होगा, और मैं स्मरण दिलाना चाहूँगा कि इतिहास साहित्य की शाखा नहीं है। प्रोफेसर ब्यूरी ने इतिहास के साहित्यिक स्वरूप पृष्ठ संख्या 94 का विरोध इसलिए किया है क्योंकि यह उसके वैज्ञानिक स्वरूप में बाधक है। इसे जोरदार शब्दों में उन्होंने कहा है कि अब उपयुक्त समय आ गया है कि इतिहास को साहित्यिक शैली से वंचित किया जाए तथा व्यक्तिगत भावनाओं के प्रभाव से मुक्त किया जाए। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के लिए एक आंदोलन चला। जर्मनी के विद्वानों ने इसका नेतृत्व किया। इंग्लैंड में इस आंदोलन का नेतृत्व प्रोफेसर जेवी ब्यूरी ने किया। इतिहास लेखन पर इसका व्यापक प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आधुनिक युग के अधिकांश इतिहासकारों की रचनाओं में रोचक तथा साहित्यिक शैली का अभाव परिलक्षित होता है। SW टेम्परले के इतिहास लेखन व शैली में सर्वत्र रोचकता का अभाव दिखाई देता है। फिर भी पीटर हाउस के मास्टर एवं सुसंस्कृत व्यक्ति थे। वे इस बात से पूर्णतया अवगत थे कि वे क्या कर रहे हैं। G.N. क्लार्क ने भी रचनाओं को साहित्यिक शैली से रोचक तथा आकर्षक बनाने का प्रयास नहीं किया। साहित्यिक शैली को इतिहास लेखन में प्रधानता देने वाले G.M. ट्रेवेलिन को इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं स्वीकार किया जाता है। उनकी रोचक तथा आकर्षक साहित्यिक शैली को देखकर उनका इतिहास संबंधी ज्ञान आज प्रश्नवाचक बन गया है। वैज्ञानिक अवधारणा से प्रेरित अधिकांश इतिहासकार उन्हें इतिहासकार की मान्यता प्रदान करने में संकोच का अनुभव करते हैं। उनकी ऐतिहासिक कृतियां इंग्लैंड अंडर क्वीन एन तथा गैरिबाल्डी सीरीज साहित्यिक शैली से परिष्कृत है, अत्यंत रोचक तथा पठनीय है, परंतु उन्हें इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उनकी रचनाओं में ऐतिहासिक तथ्यों की सर्वत्र उपेक्षा की गई है। ट्रेवेलियन की रचनाएं भाव प्रधान तथा व्यक्तित्व प्रधान है। सत्य तथा यथार्थता को प्रधानता देने वाले इतिहासकारों ने इतिहास को कला तथा साहित्य की शाखा स्वीकार नहीं किया है। क्रोचे के अनुसार साहित्य इतिहासकार का कार्य कहानी का प्रस्तुतिकरण मात्र है, इसमें कला की आवश्यकता का विशेष महत्व नहीं है। अनुसंधान इतिहास का मूल तत्व है। कला को प्राथमिकता देने वाले इतिहासकार मोटले को इतिहासकार की श्रेणी में नहीं रखा जाता। यदि इतिहास को कला अथवा साहित्य के आवरण में प्रतिष्ठापित कर दिया जाए तो मोटले की रचनाएं सर्वाधिक लोकप्रिय हो जाएंगी। यद्यपि इतिहास विज्ञान नहीं है, फिर भी विषय वस्तु के प्रति इतिहासकार का दृष्टिकोण सर्वथा वैज्ञानिक होता है। रेनियन ने लिखा है कि यद्यपि इतिहास विज्ञान नहीं है, फिर भी एक अनुशासन है और विषय वस्तु के प्रति इसकी पहुंच विज्ञान की भांति है। इस कथन का तात्पर्य यह है कि पृष्ठ संख्या 95, इतिहास के अध्ययन की शैली कलात्मक नहीं अभी तो वैज्ञानिक होनी चाहिए। विज्ञान की विधियों से परिष्कृत इतिहास को आधुनिक इतिहासकारों ने मान्यता प्रदान की है। यही कारण है कि मैकाले तथा कार्लाइल को सफल इतिहासकार नहीं स्वीकार किया जाता, क्योंकि उनकी रचनाओं में वैज्ञानिक विधियों का सर्वत्र अभाव दिखाई देता है। उनकी रचनाएं साहित्यिक शैली में हैं। ट्रेवेलियन ने इतिहासकारों के विषय में लिखा है, मैकाले तथा कार्लाइल स्वयं अच्छे और सफल इतिहासकार होते यदि उन्हें इतिहास विषय की शिक्षा अध्ययन के सभी स्तरों पर प्राप्त हुई होती। उन्होंने 19वीं सदी के उत्तरार्ध की अपेक्षा पूर्वार्ध में इतिहास की जो कुछ शिक्षा प्राप्त की वह वैज्ञानिक विचारधारा से सर्वथा अप्रभावित थी। निसंदेह इतिहास को वैज्ञानिक स्तर प्रदान करने का प्रयास 19वीं सदी के उत्तरार्ध में हुआ। यदि वैज्ञानिक अनुशासन के परिवेश में उन्हें रोचक तथा आकर्षक शैली में इतिहास लिखने का अवसर मिला होता तो निश्चय ही वे विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहासकार होते। इतिहास को कला स्वीकार करने का तात्पर्य यथार्थता की उपेक्षा करके उसे व्यक्तित्व भावनाओं तथा साहित्यिक शैली से परिष्कृत करना है। यथार्थता के अभाव में इतिहास निश्चित रूप से अपना अस्तित्व खोकर कल्पना तथा भाव प्रधान साहित्य बन जाएगा। वैज्ञानिक इतिहासकारों ने इतिहास के कलात्मक स्वरूप पर तीव्र प्रहार करके उसे कला स्वीकार नहीं किया है। क्रोचे ने भी इतिहास को कला स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इतिहास विज्ञान है अथवा कला, इस इतिहास विवेचना की विषय वस्तु नहीं है। अतः इतिहासकारों को इसे वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए छोड़ देना चाहिए। इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य ऐतिहासिक गवेषणा की आधुनिक विधाओं के आधार पर ऐतिहासिक व्यक्ति तथा घटनाओं का समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप अतीत का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। उसका कार्य किसी अभियंता की भांति कार्य योजना मानचित्र प्रस्तुत करना, किसी प्रशासकीय सचिव के रूप में शोध अथवा अन्वेषण संबंधी परिणाम का स्पष्ट प्रस्तुतिकरण करना चाहिए। अनावश्यक शब्दावलियों द्वारा यथार्थता को अतिरंजित करने के प्रयास का स्पष्ट तथा यथार्थ चित्रण पर अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। डच इतिहासकार जेपी ब्लॉक की आलोचना का प्रमुख कारण यह है कि उन्होंने अनावश्यक शब्दावलियों द्वारा अपने वाक्यों को दुरूह बनाने का प्रयास किया है। इतिहास का सार तत्व शोध होता है। यद्यपि इतिहास विज्ञान नहीं है, परंतु यथार्थता के परिवेश में इसका स्वरूप पृष्ठ संख्या 96 वैज्ञानिक होना चाहिए। इतिहास में अतीत संबंधी स्पष्ट तथा यथार्थ ज्ञान वैज्ञानिक विधा द्वारा ही संभव है। इतिहास गतिशील है। इतिहास की गतिशीलता में एक प्रक्रिया अंतर्निहित है। उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट हो जाता है कि इतिहास को कला अथवा साहित्य के आवरण से मुक्त रखना चाहिए। यही कारण है कि GM ट्रेवेलियन, मोटले, मैकाले, कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट तथा गिबन जैसे रोमांटिक युग के महान इतिहासकारों के इतिहास संबंधी ज्ञान को चुनौती दी जाने लगी है। यही नहीं अपितु उन्हें इतिहासकारों की श्रेणी में सम्मानजनक स्थान नहीं दिया गया है। आधुनिक इतिहासकारों की इस प्रकार की अवधारणा भ्रांतिमूलक है। प्रख्यात आधुनिक इतिहासकारों के मतानुसार प्रत्येक इतिहासकार का पुनीत कर्तव्य समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के अनुसार लेखन करना है। GM ट्रेवेलियन, मोटले, मैकाले, कार्लाइल, वॉल्टर स्कॉट तथा गिबन रोमांटिक युग के महान इतिहासकार थे। इस युग का जनमानस आकर्षक, रोचक तथा साहित्यिक शैली की रचनाओं को अत्यधिक पसंद करता है। इसलिए मैकाले जैसे सर्वाधिक लोकप्रिय इतिहासकार ने कहा था कि मुझे जब तक अपनी रचना से संतोष नहीं होगा तब तक मेरी इतिहास रचना नव युतियों के टेबल से न्यूनतम रोचक उपन्यास को परित्याग योग्य बनाने में समर्थ न हो सके। रोमांटिक युग की आवश्यकता के अनुसार उन महान इतिहासकारों ने लोकप्रिय इतिहास की रचना की। परिस्थितियों का सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार बदलना अवश्यंभावी है। भावी परिवर्तनों का अनुमान लगाना अत्यंत कठिन है, कॉलिंगवुड ने उचित ही कहा है कि किसी भी महान व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय इतिहासकारों को स्वयं उसकी परिस्थिति में रखकर उसकी उपलब्धियों तथा कार्यों को की विवेचना करना तथा मूल्यांकन करना चाहिए। डॉक्टर आरपी त्रिपाठी का अभिमत है कि औरंगजेब द्वारा हिंदुओं के मंदिरों को ध्वस्त करना, जजिया कर पुनः लगाना, सिखों सतनामियों के विद्रोहों को बर्बरतापूर्वक दमन करना तत्कालीन परिस्थितियों की आवश्यकता थी। औरंगजेब की परिस्थितियों की अज्ञानता के परिणामस्वरूप आधुनिक इतिहासकार ने सांप्रदायिक भावावेश में उसकी आलोचना की है। इसे इतिहास का न्याय कदापि स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार रोमांटिक युग के इतिहासकारों ने समसामयिक समाज के लिए इतिहास लेखन किया था। वर्तमान सामाजिक परिवर्तनों के परिवेश में उनकी आलोचना तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती। वह युग दृष्टा होता है, उसे भविष्य दृष्टा समझना एक महान भूल होगी। साहित्यकार की भांति इतिहास का समसामयिक समाज का प्रतिनिधित्व करता है। भविष्य अंधकार में है, अतः अंधकार में भविष्य की कल्पना की अपेक्षा उससे नहीं करनी चाहिए।